Neshtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Grantha Srimad Bhagavatam Tritiya Skand Adhyaya ka Shishake Dehutika Shlok Dehutika Shlok अध्याय 23 श्लोक संख्या 49। कल भी हम यही लिए थे, इसी की पुनरावृत्ति करेंगे। पतिं सा प्रव्रजष्यन्तम् तदा लक्ष्यो शति बही स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता। पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तम् तदा लक्ष्यो शति बही स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता। पतिं सा प्रव्रजष्यन्तम् तदा लक्ष्यो शति बही स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता। पतिं सा प्रव्रजष्यन्तम् तदा लक्ष्यो शति बही स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता। प्रतिं सा प्रव्रजिष्यन्तम् तदा लक्ष्यो शति बही स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता। पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तम् तदा लक्ष्यो शति बही स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता। शब्दार्थ हम लिए थे तो केवल अनुवाद और तात्पर्य का कुछ भाग पढ़ेंगे। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिविदान स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की। जब उसने देखा कि उसके पति ग्रह त्याग करने ही वाले हैं तो वह बाहर से हंसी किंतु हृदय में अत्यंत विकल और संतप्त थी। एक बार पुनः तात्पर्य। कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से अपने गृहस्थी के कार्यों को जल्दी ही समाप्त कर लिया। हवा में प्रासाद खड़ा करने, अपनी पत्नी तथा गंधर्व कन्या के साथ समग्र ब्रह्मांड का भ्रमण और फिर संतान उत्पन्न करने के कार्य समाप्त हो चुके और अब अपने पूर्व वचनों के अनुसार उन्हें अपना घर छोड़कर आत्मबोध की अपनी असली रुचि के लिए प्रस्थान करना था। अपने पति को प्रस्थान की स्थिति में देखकर देवहूति मन ही मन अत्यंत विकल थी किंतु ऊपर से हंस रही थी। कर्दम मुनि के उदाहरण को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जिस व्यक्ति की प्रमुख रुचि कृष्ण भावनामृत में है, यदि वह गृहस्थ जीवन में फंस भी जाता है तो उसे घर के आकर्षण को जितनी जल्दी हो सके त्याग देने के लिए उद्यत रहना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्वल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित। असाधु साधुना दाय नाति नीचो ततारक हान मुंच कदाचिन माम प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुर। पतिंसा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्षोशति बहि स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विधूयत। कर्दम मुनि द्वारा गृह त्याग इस प्रसंग का हम कल भी श्रवण किए थे और उसी विषय पर कुछ और अधिक चिंतन आवश्यक समझा, इसलिए हमने उसको और थोड़ा आज पुनः उसी पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ भी हम देखते कि जब परीक्षित महाराज तक्षक के द्वारा ग्रसित होने वाला जो श्राप था वह उन्हें प्राप्त हुआ। शमिक ऋषि पुत्र थे श्रृंगी, उन्होंने श्राप दिया और जैसे उन्हें यह समाचार प्राप्त हुआ हालांकि जब वे शमिक ऋषि के ऊपर मृत सर्प डालकर आए थे तब से उनके मन में यह चिंतन चल रहा था कि निसंदेह मुझसे एक घोर अपराध हुआ है, इसके फलस्वरूप निश्चित रूप से मुझे कुछ न कुछ दंड प्राप्त होना ही चाहिए उस अपराध का मोचन के लिए। और वे स्वयं ही इस प्रकार से अनुताप करने लगे, ओहो मया नीच मना अनार्यवत कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। वास्तविक मैंने अत्यंत नीच अनार्य पूर्ण कार्य किया है और एक ब्राह्मण तेजस्वी ब्राह्मण की अवज्ञा की, अनादर किया और उसके फल स्वरूप स्वयं ही वे कह रहे ध्रुवम ततो मे कृतदेव हेलनात् दुरत्ययम् व्यसनम् न अतिदीर्घात्। ध्रुवम निश्चित रूप से कृतदेव हेलनात् एक ब्राह्मण देव की अवहेलना के कारण द्वितीयम व्यसनम न अति दीर्घात् बहुत ही शीघ्र मेरे जीवन में बहुत बड़ा विपत्ति आनी चाहिए। तदस्तु कामम तव तव अघनिष्कृताय वास्तविक इस पाप का प्रायश्चित के फल स्वरूप तदस्तु जो मेरे जीवन में जो विपत्ति आनी है वे आए, सहज रूप से स्वीकार कर रहे वे हालांकि अभी तक उनको पता भी नहीं चला था श्राप मिला है। यथा न कुर्याम पुनरेव मद्धा, कि आगे से पुनः ऐसा दुस्साहस मैं कभी न करूं, इसलिए मुझे स्वयं ही दंड प्राप्त हो। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे, कहते वास्तविक एक शुद्ध भक्त जो बनना चाहता है उसकी यह चेतना होती है, जैसे उसके जीवन में उससे कुछ त्रुटि हो जाए तो स्वयं ही वह स्वीकार कर लेता है। अर्थात मैं सदैव कहता हूँ, अनर्थ निवृत्ति जब होती है तो अनर्थ निवृत्ति के पहले दो अवस्थाएं होती है। अनर्थ हमारे दोष कब निकलते हैं तो उसके पहले एक होता है, इसको कहते हैं अनर्थ जागृति। जब तक अनर्थ जागृति ना हो, मतलब अनर्थ हम में है, हम में दोष है, यह यदि हमको एहसास ना हो तब तक हम उस अनर्थों से मुक्त होने का प्रयास नहीं करेंगे। जैसे जब तक कोई व्यक्ति यह स्वीकार न कर ले कि वह रुग्ण अवस्था में, तब तक वह उपचार स्वीकार नहीं करता है। तो प्रथम आवश्यक है, वहां पर कहा था कि यह शुद्धिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है, जब व्यक्ति स्वीकार करता है। जिस तरह से भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, हमारा जीवन सदा पापे रहता नाही क पुण्य रलेश, विषयी दुर्जन सदा कामे रहता। तो जितने आचार्य गण हुए हैं, जितने भक्त गण हुए हैं, उनके जीवन में सदैव देखा गया है कि सबसे पहले अनुताप होता है, प्रायश्चित वे करते हैं अपने पूर्व कृत कर्मों के लिए। तो पहले होता है अनर्थ जागृति, और फिर उसके बाद दूसरा सोपान होता है अनर्थ स्वीकृति। कई बार हमको एहसास हो जाता है कि गलती कुछ हुई है हमसे, परंतु फिर स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए। कौन कहेगा ऐसे कि मेरे घर में आग लग जाए, मैंने दूसरों का अनादर किया तो मेरे घर में बहुत बड़ी विपत्ति आनी चाहिए। केवल दो ही उदाहरण हम देख रहे हैं, एक तो कुंती महारानी कही और यहाँ परीक्षित महाराज कह रहे हैं, उन्हीं के परिवार में आए हुए। अन्यथा हमारे जीवन में अगर कुछ संकट आए तो हम कहते हैं कि भगवान कुछ कंसेशन दे दे हमको, हमारे माफ कर दे गलतियाँ। अपराध सहस्त्राणी क्रियंते हर निशमया दासो इति माम मत्वा क्षमस्व मधुसूदन, मैं बहुत अपराध करते रहता हूँ तो मुझे माफ कर दो। तो भगवान माफ करते हुए थकते नहीं है और हम अपराध करते हुए थकते नहीं है, दोनों का विशेष स्वभाव है। परंतु यहाँ परीक्षित का हम प्रसंग देखेंगे, तुरंत लिखे अद्यैव राज्यम बल मुद्दकोशम प्रकोपित ब्रह्मा कुल अनलोमे दहत्व भद्रस्य पुनर्नमेभूत पापीयसी धीर द्विजवे देव गोभ्य। मेरी पापमय बुद्धि जो हुई, द्विज देव गोभ्य ब्राह्मण गौ और देवताओं के प्रति वैष्णव के प्रति है जो पापमय बुद्धि हुई, अनादरपूर्ण नहीं है जो भाव मुझ में आया, इसके फलस्वरूप क्या होना चाहिए? अद्यैव अभी इसी समय राज्यम बलम मृद कोशम प्रकोपित ब्रह्म कुल, ये ब्राह्मण के कोप, ब्राह्मण के चरणों में अपराध हुआ, उस ब्राह्मण अवज्ञा, एक साधु अवज्ञा के अग्नि से मेरा जितना राज्य है, मेरा बल है, ये सब कुछ नष्ट हो जाए। खुद ही कह रहे हैं दहत्व अभद्र से, इससे क्या होगा, जितना अभद्र है मेरा, जितना अमंगल मेरे जीवन में, वह नष्ट हो जाएगा और आगे से कभी ऐसा किसी साधु के प्रति अनादर का भाव नहीं आएगा। तो यहां अब विचार जब कर रहे थे उसी समय समाचार पहुंच गए। सचिंतयन इत्थम अथा शुणो यथा मुने सुतोक्तो निरुक्ति तक्षकाख्य ससाधु मेने नचिरेण तक्षका अनलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। सचिंतयन, जब ऐसा चिंतन चल ही रहा था, परीक्षित महाराज केवल सोच ही रहे थे, उसी क्षण वहां पर बतलाया गया कि अथा शुणो यथा अश्रुणोद यथा मुने सुतोक्तो निरुक्ति तक्षक आ गया, कि किस तरह से उस ब्राह्मण पुत्र ने तक्षक सर्प के द्वारा दंशित होने का शाप दिया है, यह समाचार इन्हें प्राप्त हुआ। अब हमको प्राप्त हो तो हम तो कुछ तुरंत उपाय करेंगे कैसे बचे, आपको पता चले आप किसी को 2 दिन बाद मौत आने वाली है, क्या करेंगे प्रभु जी? कहने की आवश्यकता है, अंदर चिंतन करो तो स्वाभाविक हम तुरंत कुछ ना कुछ रक्षण का प्रयास करेंगे। डॉक्टर को दिखा दो, फिर क्या कहते हैं माधव बाग रिवर्सल, रोग को कैसे पलट दे हम। भगवान कहते जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो हमारे प्रयास रहते व्याधि को भी पलट दिया जाए। ठीक है, वो तो जो जो शरीर भगवत सेवा में नियुक्त है उसके लिए ठीक है, उसके लिए कहा। तो ऐसा कुछ उपाय यहाँ पर परीक्षित महाराज ने किए। हालांकि आगे वर्णन आता है कि परीक्षित जिनका नाम ही विष्णु रात है, जो माँ के गर्भ में भगवान के द्वारा रक्षित हुए थे, तो उनमें इतना सामर्थ्य था कि वे जो व्यक्ति इस पृथ्वी में कलि को प्रवेश करने से रोक सकता है, कितनी शक्ति होंगी? आप में से किसी में दम है क्या उतना कलि को रोक दे? हम अपने ऊपर ही प्रभाव कम कर दे वही काफ़ी है हमारे ऊपर, हम ही कलि के द्वारा पूरी तरह से ग्रसित है। परंतु एक नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं कर पा रहा था कलि, ऐसा तो प्रभाव था। परीक्षित महाराज जब तक थे तब तक कलि नहीं आया कहा जाता। और जैसे परीक्षित महाराज त्याग किए फिर कलियुग प्रवेश किया, और उस समय बहुत गिन चुन के जगह दी थी, जिसमें भी उसको काफ़ी क्या कंजस्टेड फील कर रहा था, बहुत अनकम्फर्टेबल, इतना का मोकड़ा मोकड़ा नहीं था, खुला एकदम, बहुत आरामदायक स्थिति नहीं थी कलियुग की, काफ़ी एकदम घुटन सी महसूस हो रही थी परीक्षित महाराज के राज्य में। तो ऐसे परीक्षित जो कलि को भी रोक सके, ऐसे परीक्षित जो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन माँ के घर में, उनमें इतना सामर्थ्य था कि तक्षक के शाप को भी पलट सकते थे, परंतु सहज वो स्वीकार कर लिए। क्या शब्द है यहाँ पे? अथो विहाय इम अमुम च लोकम विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णांग्र सेवा अभिधन्यमान उपाविशत प्राय अमृत नद्याम। कृष्णांग्र सेवा अभिधन्यमान, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का यह स्वर्णिम अवसर मुझे प्राप्त हो गया। मैं तो सोच ही रहा था वीआरएस लेने का, परंतु भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि मैं सोचता था कब मैनेजमेंट से मुक्ति होंगी, कब ये सब व्यवस्थापन से मुक्त होकर मैं भी बैठकर अच्छी तरह से भगवान का भजन करूंगा। वहां वर्णन आता है कि जब वज्रनाभ भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र स्कंद पुराण भागवत महात्म्य वर्णन है कि समस्त द्वारका की रानियों को लेकर आए थे उद्धव कुंड पर, जब उद्धव श्रीमद भागवत कथा किए, तो वहां पर व्यवस्थापन की सेवा परीक्षित महाराज को दी गई थी। तो अंतरुण परीक्षित महाराज कह भी दिए कि मैं भी बैठकर सुनना चाहता हूं ना, मैं क्यों किचन मैनेजमेंट देखता रहूं, मैं क्यों बाकी सबका प्रसादम एकोमोडेशन देखता रहूं, मैं थोड़ा बैठकर कथा सुनना चाहता हूं। बोले नहीं, तुम अभी जाओ मैनेजमेंट देखो, तुम्हारे लिए स्पेशल भागवत होने वाली है और भागवत के लिए ही तुम जाने जाओगे, ये भागवत ऐसी होंगी जो अभी तक हुई नहीं है। तो उद्धव जो भागवत की थे वो एक महीने की थी, एक माह, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, क्रमशः जैसे भागवत जिन्होंने सुनी, भागवतम क्लास ऐसी विचित्र भागवतम कथा हुई जिसके बाद प्रसाद की व्यवस्था करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि भागवत कथा हुई, भागवत कथा जैसे जैसे पूर्ण होने लगी, जितने लोग श्रोता थे सब नित्य लीला में प्रवेश कर गए। तो आखिरी में अकेले उद्धव ही बचे थे, सब ऑडियंस चले गए। कल्पना करो, यहाँ पर इस्कॉन अमरावती में भागवतम क्लास और भागवतम क्लास के सब नित्य लीला प्रविष्ट हो गए। ऐसा अगर अनाउंस किया जाए तो अगले दिन शायद भागवतम क्लास में कोई नहीं आएंगे, क्यों? अभी तो हमको गृह त्याग की अभी इच्छा नहीं है ना, इतने जल्दी थोड़ी है प्रभु जी, भगवान धाम जाएंगे तो एक दो जन्म तो रुक जाओ अभी। ऐसी धारणा, तो वहां परीक्षित तुरंत यह विचार किए कि कृष्णांग्री सेवा अभिधन्य सेवा अधि मन्यमान उपाविशत प्राय मर्तन अध्याम। तुरंत गंगा नदी के तट पर चले गए, मतलब जो बहुत अधिक आध्यात्मिक जीवन का अनुष्ठान अपने जीवन में किया है उसके लिए ग्रह त्याग अत्यंत सहज है। अन्यथा हम सुनते ही ये प्रवचन सुनना ही हजम नहीं होता है कुछ लोगों को। तो कलयुग में जब ऐसा वर्णन किया जाए ग्रह त्याग, कर्दम मुनि ने किया, स्वयंभू मनु ने किया, परीक्षित महाराज ग्रह त्याग किए, प्रभु जी ठीक है। परंतु भक्तिवन ठाकुर क्या कहते, गृहे वन्यते थाको सदा हरि बोले डाको, ये लाइन बहुत अच्छी लगती सबको। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन बहुत अच्छा है, घर में रहो या कहीं भी रहो, वृंदावन में रहो, बस हरि नाम तो लेना है, तो घर में रह के ले सकते, इसलिए हमको ज्यादा एकदम हजम होती वो लाइन। परंतु भागवत हम देखते, भागवत में प्रारंभ से अंत तक यहां वर्णन एक परीक्षित महाराज गृह त्याग किए, अंततः सुखदेव गोस्वामी आए, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के चरणों में वंदना की और कहा कि कृपया अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। अथ पृच्छामि संसिद्धिं, सबसे श्रेष्ठ सिद्धि कैसे प्राप्त हो इस संसार में, योगिनां परमं गुरुं, समस्त योगियों में आप गुरु हैं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, कि म्रियमाणस मरणासन्न जो व्यक्ति है, आप में से कितने मरणासन्न है? म्रियमाण, म्रियमाण जिसको हिंदी में यदि आप अनुवाद करें मर्त्य, तो वास्तविक देखा जाए इस संसार को ही मर्त्य जगत कहते हैं, और इस संसार में जो जीव जन्म लेता है उसको मर्त्य कहते हैं, मर्त्य जीव। तो मर्त्य शब्द का अर्थ क्या है ये संस्कृत में? नहीं, ये लेवंतव्य नहीं होगा। मर्त्य जो मरने के लिए बना है उसको मर्त्य। जैसे आप कई बार यदि देखेंगे वन छटाई होती है ना, मतलब वन में पेड़ों को काटा जाता है। रविंद्र स्वरूप प्रभु ये उदाहरण देते कि जब पेड़ों को काटा जाता है तो जो पेड़ों को काटना है जंगल में उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर मार्क कर देते, क्रॉस मार्क कर देंगे। क्रॉस मार्क मतलब ये अभी कटने के लिए तैयार है, इन पेड़ों को काटना है, बाकियों को छोड़ना है। तो जो कटने के लिए तैयार उन पर क्रॉस कर दिया जाता है। जैसे इस संसार में कोई व्यक्ति शरीर को धारण करता है उस पर एक लिख दिया जाता है मर्त्य स्टैंप, मतलब ये मरने वाला है। तो इस शब्द के अनुसार शाब्दिक रूप से देखा जाए तो सभी के लिए पुरुष से है यत् कार्यम म्रियमाण सर्वथा। तो वह जब कहा गया यह श्रोतव्यम यथो जाप्यम यत् कर्तव्यम नुभि परो स्मर्तव्यम भजने वा ब्रूहि वा विपर्ययम, क्या सुनना चाहिए उसने, क्या जप करना चाहिए, कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए, और छठवा था प्रश्न क्या नहीं करना चाहिए। यह विपर्यय मतलब क्या क्या चीज नहीं करनी चाहिए वह बताओ। तब अंततः तो वहां पर पहले तो अभिवादन किए सुखदेव गोस्वामी, और वे कहते चिंता मत करो, ज्यादा भयभीत होने की बात नहीं है, तुम 7 दिन कह रहे हो, तुम्हारे पास अगर एक मूर्द भी रहता तो भी उतना भी पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि खटवांग महाराज का वे दृष्टांत दी जिन्होंने एक मुहूर्त में ही भगवान के चरणों को प्राप्त किया। अंततः अब तुमने पूछा कि सिद्धि कैसे प्राप्त होंगी, तो वहां प्रारंभ कहां से किया वो मैं प्रसंग वो शब्दों का स्मरण कर रहा था कि वहां पर कहते कि इस संसार में अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वस, क्या कह गया कि जिसका अंतकाल समीप है, जो स्वीकार कर ले कि मेरा अंत होने वाला है, तो अति आवश्यक। कल भी हम वो प्रबोधानंद सरस्वती का ये जो शब्दों का स्मरण कर रहे थे, कहाँ गया, तो अच्छा लगा मुझे, मैं बार बार उस श्लोक को ही पढ़ते रहता हूँ, अपने स्वयं के लिए, आपके लिए नहीं। भ्रातर यरही, भाई लोगों के लिए, बहनों के लिए भी है, भ्रातर यरही निमिलितासी नहीं नहीं तत्र को कांतात्मज भ्रातृ स्वाप्त श्रुद गणा क्वच गुणा कुत्त प्रतिष्ठादय, कि शीघ्र ही तुम्हारी आंखें बंद होने वाली है मेरे भाइयों। तो जैसी आंख बंद हो जाएंगी को कांतात्मज भ्रातृ स्वाप्त श्रुद गणा, जैसी आंख बंद होगी तो कहां है रही फिर पत्नी, कहां है बच्चे हैं, जिसके लिए इतना अधिक हम संसारी जीवन को पारिवारिक जीवन को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले लेते कभी कभी, जबकि बहुत ही क्षण मात्र है, जिसको कभी कहा जाता है कि एक नौटंकी है, एक ड्रामा के समान है, जो बहुत ही शीघ्र वो भूमिका समाप्त होने वाली है, परंतु उसको अत्यंत गंभीरता से लेते। तो यहां पर भी परीक्षित उसी को कह रहे हैं कि अंतकाल आ जाता है तो आगते गत साधवस, साधु ने अत्यंत सावधान हो जाना चाहिए, बहुत सावधान। और उसने क्या करना चाहिए, सबसे पहला कार्य यहां पर सुखदेव गोस्वामी श्रीमद भागवत के प्रवक्ता ने सबसे पहली चीज क्या बोली, सिद्धि प्राप्त करनी तो सबसे पहली क्या चीज है, छिंद्यात असंग शस्त्रे न स्पृहाम देहे नु ये चतम, यहां से प्रारंभ हुआ है, छिंद्यात काट डालना चाहिए पहले, असंग शस्त्रे न अनासक्ति वैराग्य का शस्त्र धारण करना चाहिए। जो सिद्धि प्राप्त करना चाहिए सबसे पहला कहा कि वैराग्य का शस्त्र धारण करे, और स्पृहाम जो कामना है देहे नु ये चतम, ये चतम ये देह और देह से संबंधित जितनी कामना है उसको काट डाले सबसे पहले, और तुरंत गृहात् प्रव्रजितो धीर पुण्य तीर्थ जलाप्लुत, घर छोड़ने को बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी। श्रीमद् भागवत गृहस्थों के लिए है, कोई सन्यासी के लिए नहीं है। गृहात प्रव्रजितो धीर पुण्य तीर्थ जलाप जलाप्लुत। पुण्य तीर्थ जहां पर पवित्र नदियां हो, यमुना का तट हो या गंगा का तट हो, ये वर्धा नदी भी चलेंगी पास में, इधर तक तो जाइए कम से कम, या चंद्रभागा तक जा सकते हैं। परंतु पहला शब्द ही गृहात प्रव्रजितो धीर, धीर किसको कहा, धीर उसी को कहा जाता है तो घर छोड़ने के लिए तैयार हो, तैयारी होनी चाहिए। गृहात प्रव्रजितो धीर पुण्य तीर्थ जलाप्लुत शुचौ विविक्त आसीन विधिवत कल्पितासन। आसन लेना चाहिए शुचौ, शुचौ मतलब अत्यंत पवित्र स्थान हो, पवित्र स्थान मतलब भगवान का धाम हो, भगवान का मंदिर हो। शुचौ देश शुचौ और फिर विविक्त, विविक्त मतलब जो वैराग्य को प्रोत्साहित करे ऐसा स्थान हो, मतलब एकांत हो, बहुत अधिक शोरगुल न हो, जहाँ पर जहाँ भगवान में मन स्थिर हो सके, संसार के विषय से मन निकल सके, ऐसा स्थान हो। शुचौ विविक्त आसीन, ऐसा आसन हो, ज़्यादा एकदम नरम नरम भी नहीं होना चाहिए। हमारे परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, हम देखे ऐसे वो जो प्रवचन देते ना, उनको व्यास आसन उनको थोड़ा कड़क चाहिए, सॉफ्ट वाला आसन नहीं पसंद उनको, बोले ज़्यादा ऐसा नरम नरम या वो पसंद नहीं करते। तो शुचौ विविक्त आसीन विधिवत कल्पितासन, तो वहां पर भी सुखदेव गोस्वामी इसी शब्द को कहे हैं। हालांकि शब्द सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, जैसे यहां पर प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि जब माया से मोहित जब जीव होता है तो उनको ये शब्द बहुत अधिक कटु लगते हैं। क्या वो प्रभु जी आप बार बार बोलते रहते हैं, आप तो महाराज लोग हो, सन्यासी ब्रह्मचारी, घर छोड़ो घर छोड़ो घर छोड़ो। वहां क्या कहते हो, उन्मत्त प्रायवाच परिमुषित धियो माया नर्थ बीजम स्वार्थम मत्वा कृतार्थ अथन सुख विवेक दायाग्रवाच। वो जो संबंधी आदि होते वो बोलते कि नहीं 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 नहीं, घर वगैरह छोड़ने की जरूरत नहीं हो। बद्दुम बंधु जन सदैव यतते दुस्नेह पाशा, ये वो क्या है, बद्दुम बंधु जन भाई लोग क्या करते हैं, हमारे स्वजन क्या करते हैं, बद्दुम बांधने का बहुत अधिक प्रयास करते, किससे, सदैव यतते, बहुत मेहनत की जाती है कैसे इसको घर में रखा जाए। जैसे आप अन्य जितने भी क्रियाएं करें इस संसार में, तुमको कोई चिंता नहीं है, बेटा बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, व्यभिचार करे, समस्त प्रकार के दुष्कार्य करे, परंतु कुछ नहीं कहेंगे। परंतु जैसे हरे कृष्ण में गया तो सदैव यतते दुस्नेह पाशा, दुस्नेह इस संसार में जो स्नेह का पाश है, आज प्रातः काल में सुन रहा था, अच्छा लगा शो, तो इस संसार में अन्य कई पाश है, वरुण पाश होता है, नाग पाश जिसमें लक्ष्मण जी बंधे थे, समस्त पाशों में सबसे भयानक पाश स्नेह पाश को कहा गया। और स्नेह पाश कटता नहीं है, अंतर क्या है, तो वहां पर बहुत सुंदर विचार बतलाए गए कि वरुण पाश नाग पाश आदि क्या करते, कभी कभी शरीर को नष्ट कर देते हैं, मतलब एक ही वो एक बार का ही बंधन है ना, शरीर मर गया तो फिर छूट गया, परंतु तो स्नेह पाश ऐसा है जो तो जन्म जन्मांतर में बंधा रहता है, छूटता नहीं है, यहां तक कि एक बार का घर भी आप छोड़ दे, व्यक्ति गृह त्याग कर सकता है, परंतु तो स्नेह पाश जो ये सूक्ष्म है। तो कल हम स्थूल वर्णन किए थे, जब प्रहलाद महाराज का वर्णन आपने सुना, तो जिसको यहां पर भी कहा जा रहा है, तो वो एक बार का तो छूट जाता है, हालांकि वह भी अति कठिन है। को उत्सहेत विमोचितुम, स्नेह पाशे दृढ़ बद्धम उत्सहेत विमोचितुम, किसमें इतनी हिम्मत है स्नेह पाश को छोड़ सके, घर से निकलना इतना आसान नहीं है, गृह त्याग आदि जो बहुत कठिन है, जिस तरह से ये जो शब्द है, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बद्दू बद्दुम बंधु जना सदैव रहते, वो बार बार कहते हैं अरे घर में रहो, घर में रह के भी तो भक्ति होती है कि नहीं, इतनी ज्यादा भक्ति करने की क्या जरूरत है, अभी तुम्हारे माता पिता यहाँ पर शब्द है, वो क्या कह रहे हैं, इधर इधर आते, ऋणग्रसतो याया कथमः वृन्दावनमहं त्यजेव वृद्धावगति पितरौ दारु शिशुकान् कथं वा मज्जीवान् बत परिहेय निजजनान् स्ताश्लाघ्यो भूत्य वेफल कलनो मुह्यति कूदी। इसको देख कूदी कूदी मोह कैसे आता है, तो बोले एकदम ऐसी बुद्धि आ जाती है, जब जो बुद्धि आपको दी जाती है कैसी, कहते कि ऋणग्रसतो, अरे इतना खर्चा है घर में, इतना खर्चा है, तुम नहीं कमाओगे तो कौन करेगा, घर का पालन पोषण कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूं ना, अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा। सबसे पहली ये चीज, ऋणग्रसतो या कतम वृंदावनम, मैं कैसे वृंदावन यात्रा जा सकता हूं, शुक्ताल यात्रा है, चार धाम यात्रा कैसे जा सकता हूं, घर की प्रभु जी, घर नौकरी है, घर गृहस्थी है, फिर त्यजेव वृद्धावगति पितरौ, अरे मेरे बूढ़े माता पिता, अगर मैं नहीं देखूंगा तो कौन इनको देखेगा। तो पहला है कि घर का व्यवस्थापन, घर का पालन मैं कर रहा हूं, माता पिता की सेवा, क्या कहा गया सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है, मातृदेवो भव पितृदेवो हो, माता पिता भगवान का स्वरूप है, कहा जाता है ना, बोले प्रभु जी उल्टा प्रवचन आप दे। त्यजेव वृद्धावगति पितरौ दार शिशुकान, और ये मेरी पत्नी बच्चे, मेरी जिम्मेदारी है ना, पातत्य कल प्रभु जी ने प्रवचन में कहा, पति मतलब क्या, जो समस्त अवस्थाओं में रक्षण करता है, तो पत्नी बच्चे किस पर आश्रित है प्रभु जी, मुझ पर है ना, अंदर से बाहर से कैसे बोले प्रवचन के टाइम, अंदर से अनुभव तो यही है कि ये परिवार मेरे कारण ही चल रहा है, माता पिता की सेवा मैं कर रहा हूं, ये पत्नी बच्चे जो ये मेरे आश्रित है, कैसे मैं छोड़ू, मदगत प्राण मतलब मैं इनका प्राण, कथम वा मत जीवन बत परिहे ये निज जनान, ये मेरे निज जन है, ये मेरे अपने सगे है, ये सबसे बड़ा मोह है, मेरे है मोह। दो क्या है, एक तो कि भगवान पराये है, ये भगवान है ही नहीं, अधिकांश तो मान्यता यही है, भगवान असत है और ये जगत सत है, जबकि संसार के सबसे श्रेष्ठ वैष्णव कौन है, तो शिव जी, और वो क्या कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हर हरि भजन जगत एक सपना। ये संपूर्ण जगत के लिए दो तीन जो दृष्टांत, एक तो कहते स्वप्नवत कहा जाता है, या फिर इसको एक केवल एक मंच पर जैसे अभिनय हो रहा है वैसे अभिनय कहा गया, हिरण्यकश्यप जब प्रवचन दिए तो वह क्या कहते हैं, कहते कि संसार के संबंध कैसे, जैसे एक नदी का प्रवाह है, नदी के प्रवाह में अलग अलग घास के तिनके एक साथ आ जाते हैं, फिर कुछ समय के बाद अलग अलग हो जाते हैं, वैसे संसार के संबंध है। या दूसरा दृष्टांत वे दिए हैं, जिस प्रकार से एक सराय में कुछ लोग एक साथ रात्रि के समय रुकते हैं, और फिर क्या धर्मशाला में, और प्रातःकाल चले जाते हैं। या और एक दृष्टांत दिया जाता है, जैसे गांव में कभी कभी पानी भरने के लिए कुएं पे सभी स्त्रियां एक साथ आती है, तो कुछ समय के लिए एक साथ रहती है, अपना अपना कार्य होगा तो सब अलग अलग बिछड़ जाते हैं। तो वैसे इस संसार के संबंध हैं, जिनके प्रति इतनी अधिक हमारी ममता रहती है कि मेरे है मेरे, परंतु वास्तविक हमारे नहीं है, ये जब तक दृढ़ निश्चय ना तब तक त्याग करने की भावना आएंगी नहीं, क्योंकि हमारा स्ट्रांग कन्विक्शन है ये हमारे ही है और ये ही हमारे है। ये महाराज लोग क्या है, महाराज लोग तो पराए हैं, ये प्रवचन देते, ये थोड़ी साथ देने वाले हैं, साथ कौन देंगे, हमारे अपने सगे संबंधी साथ देंगे, तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहां पर भी कहते, माया कापि विमोहिनी शिशुकल लाप स्त्रिया सौरतम, ये विमोहिनी माया है, ये बहुत ही भयंकर माया है, जो माया क्या करेंगे, कन्विंस करा देंगे, ये प्रभु जी जितना भी प्रवचन में बोलेंगे ना बिल्कुल ध्यान से मत सुनो, ये प्रभु जी क्या बोलने दो, परंतु हम तो अंदर से कन्विंस है कि हमको छोड़ना नहीं है, गृह त्याग तो ये प्रभु जी डरा देंगे, आज तो प्रवचन देंगे हमको, हमको तो त्याग नहीं करना है। माया को भी विमोहिनी शिशु कल लाप, शिशु आलाप करता है ना, तो सबसे भयंकर विमोहिनी माया क्या, एक तो बंधुजन बांध के रखते हैं स्नेह पाश में आपको, वो बोलेंगे कि नहीं ये सब घर तुम्हारा है, ये तुम्हारा बंगला है और हम तुम्हारे है, ये सब बार बार वो याद दिलाते हैं। फिर शिशु की आवाज, फिर स्त्रिया सौरतम, स्त्री के साथ जो विलास आदि, घोर अनर्थ निदान अर्थ महः त्वं विद्यध्या पार्थ पर, अनुवाद पढ़ लेता हूं मैं केवल, बंधुगण दुस्नेह के पाशों से बांधने के लिए सदा ही यत्न करते हैं, बच्चों की अव्यक्त मधुर ध्वनि और स्त्री के साथ विलास आदि तो कोई अनिर्वचनीय विमोहिनी महामाया ही है। अहो धन को ही घोरतर अनर्थों का निदान रूप में निष्प्रयोजन तथा परम स्वार्थ को नाश करने वाला जान, अतः और सबको त्याग करके तो वृंदावन में आ जा। यहां पर प्रबोधन सरस्वती कहते अद्यश्वा त्वम मरिष्य से बुद्धे, हे मूर्ख कहेंगे अबुद्धे, अबुद्धे मतलब मूर्ख। अद्यश्वा त्वम मरिष्य, आज या कल तू मरने वाला है कि नहीं? वो कहते आज या कल तुम्हें मरना ही है। किमते कांता पुत्र वित्तादि कुरियात, ये जो कांता मतलब ये जो तुम्हारी पत्नी है, बच्चे है, क्या करने वाले हो मरने पर? वित्तादि कुरियात, ये इतना पैसा कमा रहा है, बहुत कमाया, बैंक में एफडी डिपॉजिट कर दिया 25 लाख, अगले सेकंड मर गए क्या होगा? एफडी एफडी रह जाएगा ना, एक रुपया भी काम नहीं आएगा। यावत देह सर्वतो मृत्यु अस्ति, तो जब तक मृत्यु का भय है तुरंत निकलने की तैयारी कर। योषित पिंडे किम न पश्य संदेह प्रत्यक्षम यत्त प्रक्षरेत छिद्र केभ्य। ये थोड़ा ब्रह्मचारी श्लोक हो गया, अंधा हो गया है कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? वो कहते योषित पिंडे, ये स्त्री का शरीर जो तू देख रहा है, उसके जो क्या दुर्गंधपूर्ण छिद्रों से क्या निकल रहा है तुझे दिखाई नहीं देता है? क्यों इस देह के प्रति इतना मोह रखा है तूने? कहते स्त्री के कुछ से छिद्रों से क्या निकलता है, क्या दिख नहीं रहा है अंधे को? और यह जो इतनी क्या नरम नरम चमड़ी है, इसके पीछे इतना मरा जा रहा है तू? वो कहते हैं और सुंदर शब्द लगे से महानिरय निरधिम हृदय निरूप्य नारी वपु विलोक्य परमा पदा उपमागमं संपदाम विभाव्य जनरंजन हरिसात्मता भंजनम भजोरपति भूषणम परम धाम वृंदावनम। वो चार बातें कहते, क्या कहते? वे कहते महानिरय निरधिम हृदय निरूप्य नारी वपु, नारी वपु मतलब स्त्री के देह को क्या देखो, नरक सागर, ये दोनों के लिए एक जैसा है, स्त्री पुरुष को देखे, पुरुष स्त्री को। विलोक्य परम आपदाम उपगमाम संपदाम, भारी से भारी विपत्ति को जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद समझो भगवान का। स्त्री देह को, स्त्री पुरुष मतलब विपरीत लिंग देह को नरक सागर, विपत्तियों को संपत्ति, विभाव्य जनरंजनम हरिसात्मताम भंजनम, और इस संसार के लोगों का जो मनोरंजन है ये मेरे हरि भजन के लिए सबसे बड़ा भंजन है, रंजन ही भंजन है, मेरे भक्ति का सबसे बड़ा ये घातक है। भजोरपति भूषणम परम धाम वृंदावनम, तो ऐसे वैराग्य रूपी आभूषण को तू धारण कर। वहां पर वे कहते का अपेक्षा मित्रु मातृ बंधु सुरदाम का स्निग्ध मुग्ध का, क्यों अपेक्षा रखी तूने पिता से, माता से, बंधु से, बांधव से, मनोरम संता प्रत्यक्षात्मने जीवनेति सुभगे वा का वा कलत्रे रति। मैं अनुवाद पढ़ लेता हूं, पिता माता बंधु बांधव से कौन सी अपेक्षा है, मनोरम संतान संतति का ही कैसा स्नेह है, अपने जीवन में अति सौभाग्यवती स्त्री में कैसी आ सकती है, घर धन आदि का ममता क्यों रखी है तुमने, क्यों इतना अधिक तू शरीर के लिए चिंता कर रहा है, बलपूर्वक इन सभी ग्रंथियों को छेद कर दे और वृंदावन वास कर। वहां में कहते और कैसा इस संसार का वास्तविक हानि क्या है, ये जो स्नेह पाश में क्या, तो कहते सबसे बड़ी हानि कल भी हम अंततः चर्चा किए थे कि मानव जीवन जो बहुत मुश्किल से मिला है और एक में यह मानव तन प्राप्त हुआ है प्रत्यक्ष रूप से राधा कृष्ण की सेवा में नियोजित होने के लिए। इसी जीवन में भगवत अनुभूति, भगवत साक्षात्कार करना, यह दृढ़ संकल्प होना अति आवश्यक है। और उसके लिए जैसे उदाहरण दिया जाता है कि समझो आपके घर में यदि कोई नौकर है, कोई नौकर चाकर है, और उसको आपने कहा कि मान लीजिए आपको सिर दर्द हो रहा है और आप कहें कि थोड़ा ये पैसा लो जाके क्रोसिन लेकर आओ, पवन मेडिकल से क्रोसिन लेकर आओ, और नौकर जो है कहते जी प्रभु जी, कहे कि गया वो, और गया और जाकर फिर आलू भिंडी लेकर आया, टमाटर खरीद कर लेकर आया, फिर वड़ा पाव भी खरीद कर लेकर आ गया, दुनिया भर की कई चीज खरीद कर लाया है वो, और उसने पैसे भी बचा दिए, परंतु तो जो चीज खरीदने के लिए आपने कहा था वो वस्तु नहीं खरीदी, बाकी सब खरीद लिया। अब आप क्या करेंगे उस नौकर के साथ? अरे भेजा कुछ स्पेशल काम के लिए था ना, वो क्रिया ने की और दुनिया भर का सब वस्तु लेके आया। जो नहीं अपेक्षित थे वो सब कार्य किया और जो कार्य अपेक्षित था वो नहीं किया, तो स्वाभाविक है कि मालिक उससे क्रुद्ध होगा, मालिक उसे दंड देगा। तो कहा जाता है मानव शरीर प्राप्त करके यदि इस जीवन में यदि राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान बहुत नाराज होते उससे और दुनिया भर। तो यह क्या करता है, अन्य जितने भी जिसे सीधा सीधा कल भी मैं अंत में कह रहा था, ये संसार का जो पसारा है, इतना पसारा हमने फैला के रखा है ना दुनिया भर का, मायका अलग तो ससुराल अलग तो फिर ये रिश्तेदार, और अभी मुझे एक सप्ताह पूर्व लाइव चल ही रहा है फेसबुक डीएक्टिवेट किया, एक वक्त से मैं चर्चा कर रहा था, उन्होंने थोड़ा मुझे काफी डांट दिया। अरे संसार में अभी भगवान से संबंध बहुत जोड़ने के लिए बहुत कम समय बचा है, क्यों इतने संबंध बना रहे हो, फ्रेंड लिस्ट फ्रेंड लिस्ट फ्रेंड लिस्ट, इतने सामने वाले फ्रेंड तो कुछ उससे तो हम संबंध आदान प्रदान कर नहीं पा रहे, दुनिया भर का हजार हजार फ्रेंड लिस्ट फेसबुक फिर ये फिर वो, क्या आवश्यकता है। भगवान का फेस तो ठीक से देख नहीं रहा, फेसबुक चल रहा है फिर व्हाट्सएप चल रहा है, अनावश्यक जिसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। संसार में इतने विक्षेप हम बना लेते हैं और इतना अधिक वो चीजों में फंस जाते हैं कि मेन जो फोकस था, कल संध्या में हम चर्चा कर रहे थे, भगवान का दर्शन तो होता ही नहीं है। भगवान का दर्शन एक औपचारिकता बन जाता है और संसार को बहुत अधिक निहारते रहते हैं ये सभी अलग अलग प्रकार के यंत्रों के माध्यम से। तो यहां पर शब्द क्या है, क्या नुकसान है, तो निज सर्वनाश का नाश करम आत्मसुरुत सुतदार मित्र परिवार गण। ये आत्मसुरुत मतलब अपने जो सुहृत जिनको हम कहते हैं, सुत संतान, दार दार मतलब पत्नी, मित्र परिवार गण क्या है, निज सर्वनाश कर, ये विशेषण दिया गया है परिवार के लिए। और ये जो अनुभवी है, जो भगवान के नित्य पार्षद है प्रबोधानंद सरस्वती, कोई साधारण नहीं है, वे कह रहे कि निज सर्वनाश कर, आत्मा का सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि इतना कीमती समय है, एक एक सेकंड जो एक एक श्वास कहा जाता है बहुत कीमती है मानव तन का, परंतु बहुत अधिक हम बिता देते ये संसार में परिवार पालन पोषण आदि में, जो आवश्यक रहता भी नहीं, उतना आवश्यक नहीं है। किस लिए गृहस्थ जीवन है, तो स्पष्ट रूप से कहा जाए तो धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भर्तृषभ, कि एक आध्यात्मिक संतान की उत्पत्ति मूल तक आ जाए, एक में यही प्रयोजन है। कोई कहे कि हालांकि श्री प्रभुपाद कहते थे कि वो लाइसेंस मतलब इंद्रिय भोग के लिए, वास्तविक जो इंद्रिय को संयम नहीं करते उनके लिए गृहस्थ आश्रम नहीं है। एक भ्रांत धारणा क्या है, जैसे श्री प्रभुपाद के किसी भक्त ने कह दिया कि श्री प्रभुपाद मेरी मन और इंद्रिया अत्यंत विचलित हो रही है तो मैं विवाह करना चाहता हूं, तो श्री प्रभुपाद कह रहे मन इंद्रिया विचलित हो रही तो संन्यास ले लो। अन्य अलग अलग समय प्रभुपाद अलग अलग बात भी कहे, प्रभुपाद कहे कि संन्यास लो, क्योंकि अगर मन इंद्रिया तुम भक्तों के सन्निधि में हो सानिध्य में हो भगवत सेवा कर रहे हो भक्ति के अंगों का पालन करो, उस समय इंद्रिय मन संयम न रहे, वह व्यक्ति यदि इस भक्तों के संग से दूर जाए दाम्पत्य जीवन स्वीकार करे तो संभावना अधिक है कि वह भगवत भक्ति से और अधिक विमुख हो जाएगा। तो गृहस्थ आश्रम किन के लिए देखा जाए, एक तरह से पहले जो प्रशिक्षित हो जाते हैं मन इंद्रियों को संयमित करने के लिए और वह फिर गुरु की सेवा के लिए उस आश्रम को स्वीकार करते हैं और उस आश्रम में रहकर फिर वो आध्यात्मिक रूप से एक शुद्ध बीजा पोटी फड़े रसाल कोमटी, ऐसे शुद्ध बीज जो शुद्ध संतान को उत्पन्न किए और उनको संस्कार दिए, उसके उपरांत तुरंत परम पूज्य राम गोविंद महाराज के मनुस्मृति के अनुसार कहा जाता है जैसे बालक 12 वर्ष का हो उसके बाद उसके कोई कर्म उसके अपने कर्म रहते हैं, मतलब 12 वर्ष के पश्चात ऐसे माता पिता का उत्तरदायित्व नहीं है वैदिक शास्त्र अनुसार देखा जाए। हालांकि अब हम सोचते कि ग्रेजुएशन हो जाए बच्चे की थोड़ी शादी करवा देते प्रभु जी फिर करें रिटायरमेंट, परंतु शास्त्र अनुसार देखा और आजकल देखा जाए आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो गए, आप देखेंगे 11-12 साल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस रहते हैं, तो बाकी चीज़ों में परिपक्वता आती है ना भोग विलास आदि में, तो उसका अर्थ है कि वो अन्य कार्य को कर सकते हैं। तो भाव ये है कि त्याग अति आवश्यक है, हालांकि त्याग के लिए लोग भयभीत होते हैं परंतु त्याग स्वाभाविक है, जैसे कल भी हम कहे कि शरीर में आप अगर भोग करते तो भोग के साथ त्याग करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो फिर क्या कहते हो क्या एनिमा देना पड़ता है, कृत्रिम रूप से त्याग करवाना पड़ता है ना। जब त्याग नहीं हो रहा है, जब निकल नहीं रहा है, तो फिर कुछ कृत्रिम प्रक्रिया करनी पड़ती है। शरीर के लिए भी त्याग आवश्यक है। आप देखते हैं आपके वस्त्र आदि पर भी, समझो आप मार्ग में जा रहे हैं और आपके ऊपर यदि कुछ विष्ठा आदि गिर गई, ऊपर से पक्षी की विष्ठा गिर गई या किसी पशु की विष्ठा गिर गई, तो आप क्या करेंगे, तुरंत जाके धो लेते हैं ना, गंदगी को तुरंत निकाला जाता है। आप एडवर्टाइज करके कुछ जैसे फोटो निकालेंगे, सेल्फी, देखो मेरे ऊपर विष्ठा गिरी हुई थी, फोटो निकाल के फेसबुक पे डालता हूं मैं और फिर मैं प्रचार करूंगा। त्याग का एक तो त्याग करना ही है संसार का, परंतु आगे क्या कहते हैं, त्याग का भी त्याग करना है। मतलब मैंने त्याग किया ये भाव भी आप में रहा तो फिर अहंकार आ जाएगा। तो वास्तविक त्याग क्या कहेगा, त्याग का भी त्याग कर दे उसको वास्तविक त्याग कहा। त्याग भी कर दिया, जैसे हाँ मलमूत्र आपने त्याग दिया तो आप कुछ एडवर्टाइजमेंट करते क्या, आज मैंने एक पाव मलमूत्र त्याग किया या आधा किलो, छी प्रभु जी आप व्यासासन बैठ के ऐसे बोलते हैं, ये चीज का वर्णन भी नहीं करते हमने कितना आज मल त्याग किया, कितना हमारे वस्त्र पर कुछ गंदगी लग गई तो हमने इतने मैल धो धो के निकाली, देखो ऐसा कहा नहीं। मैल को स्वाभाविक निकाल दिया जाता है, तो वैसे ही जीव आत्मा जो शुद्ध कृष्ण का दास है उसके ऊपर इस संसार के समस्त आवरण जो है वो मैल के समान ही है। इसलिए भक्ति का प्रथम परिभाषा है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। तो यहां तक अभी ऐसे कई श्लोक यहां पर दिए गए। अपना सर्वनाश करने वाले, अपने सुहृद स्त्री पुत्र मित्रादि परिवार के लोगों की वंचना कर, कब मैं दृढ़ बुद्धि पूर्वक दौड़कर श्री हरि के शिव वृंदावन का आश्रय ग्रहण करूंगा। और वास्तव यहाँ पे जैसे आगे कहते हैं ना, महाभाग्य प्राप्तम वपुर इदम इहा करणी महिमा अद्भुतो वृंदाटव्याम कलितम अखिलम स्वप्न सदृशम शुभाया आश्वासु नहीं मतौ नापि वपुषी क्षणस्मिन्नेव त्वं तदविशल वृंदावनम वनम। वह कहते सबसे बड़ा महाभाग्य है, तीन महाभाग्य इधर कहे उन्होंने। पहला महाभाग्य, महाभाग्य प्राप्तम वपुर इदम, ये मानव शरीर ये सबसे बड़ी कृपा है भगवान की। ये भजन के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन मानव शरीर प्राप्त हो मतलब धन्यवाद देना चाहिए। और उसके बाद में इह करणी महिमा अद्भुतो वृंदाटव्या, जब भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम की महिमा सुनने मिले हमको, वो हमको समझ में आ जाए, नाम की महिमा समझ में आती है, नाम के प्रति जो निष्ठा होती है, फिर भगवान के विग्रह की सेवा, भगवान के धाम का वास करना, भगवान के जो भक्त है उनकी सेवा करना, वैष्णव गुरु की सेवा, यह महिमा सुनना ये बहुत बड़ा भाग्य है। सत्संग ये बहुत कृपा से मिलता है। पूर्व कोई भी पुण्य, कभी कभी अगर समझ आपको ये विचार आ जाए मन में कि मैंने कुछ विशेष क्रिया की है उसके फल स्वरूप मैं भजन कर रहा हूं, तो बोले कि फिर तो अगर किसी पुण्य का फल भक्ति होता, किसी पुण्य का फल साधु संग होता, तो फिर वो भक्ति और साधु संग बहुत नीचे हो गया। किसी भी पुण्य में ये सामर्थ्य नहीं कि आपको भक्ति प्रदान करे, किसी भी पुण्य में सामर्थ्य नहीं कि साधु संग प्रदान करे। इसीलिए इसको कहा जाता है अहेतुकी कृपा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉजलेस मर्सी। बस कृपा हो गई भगवान की, भगवान कुछ विशिष्ट जीवों को जब चुन लेते हैं तो उसको साधु संग में रखा जाता है। तो पहला कृपा मानव तन प्राप्त होना, दूसरा कृपा भगवत भक्ति के प्रति निष्ठा आना, और तीसरी कृपा कही गई है अखिलम स्वप्न सदृशम। ये जगत यदि स्वप्नवत आपको लगने लगे, ये संसार, ये संसार के जो संबंध है वो स्वप्नवत लगे, ये अगर मन में आ गया तो ये कहते कि इसको क्या कहते शुभ बुद्धि, यहां पर कहते ये सबसे शुभ बुद्धि है। परंतु क्या होता है, ये शुभ बुद्धि ज्यादा समय नहीं रहती है, बाद में लगता है नहीं नहीं ये दुनिया भी सब कुछ है, ये परिवार ये सब कुछ है, ऐसे वाक्य मन में आने लगते हैं। तो इसी को यहां पर कहा गया है। इतना ही नहीं, केवल शास्त्र के ही वचन नहीं है, शास्त्र तो दूर की बात है, यहां तक कि स्वयं भगवान के वचन है। भगवान ही रामायण में जिस तरह से कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुहृत परिवारा। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुहृत परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन बांध ही अडोरी। क्या कहा गया यहाँ पे तुलसीदास जी, भगवान रामचंद्र कह रहे हैं कि क्या करो, जितनी जहां जहां पर तुमने ममता को बिखेर के रखा है अपनी, सभी ममता को नष्ट नहीं करना, कहते सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता को इकट्ठा करके मेरे चरणों में पूरी तरह से लगा दो, मम पद मेरे चरणों में लगाओ, बांध, भगवान स्वयं कह रहे कि मुझे बांध डालो, भगवान बांधने के लिए तैयार है, प्रॉब्लम क्या, हम बांधने को तैयार नहीं है, हम ही अपनी ममता को इतने दुनिया के विषय में बांध के रख दिए। तो यह और भी काफी कुछ था इसे, बहुत सारे विषय थे इसमें। यह माया का जो सबसे बड़ा है, क्या कहते हैं, जाल है यह स्नेहपाश। तो स्नेहपाश का ही प्रथम भाग हुआ जिसको कहते ग्रॉस अफेक्शन, जो देह और देह से संबंधित आदि जो संबंध है। वास्तविक यहां जिस तरह से भक्तिनाथ ठाकुर कहे, मानस देह गेह जो कि चुको मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, यदि यह भावना रहती है तो फिर ठीक है कि वास्तविक भगवान द्वारा अर्पित है और ये पूर्ण रूपेण भगवत सेवा के लिए ही प्रयोजन है, ये मेरे कोई भी मेरे नहीं है, ये सब भगवान के हैं, यह समझना। तो यह छोड़ना एक तरह से अति कठिन है, परंतु एक बार छोड़ भी दिया जाए तो आगे कहते फिर भी स्नेह पाश टूटता नहीं है, घर छोड़ देते तो फिर आश्रम बना लेते। तो एक वक्त बहुत सुंदर कहे, इस संसार में बताओ कौन व्यक्ति जो गृहस्थ नहीं है, हर एक की अपनी गृहस्थी है कि नहीं, कोई आश्रम में अपनी गृहस्थी बना के रखा है, किसी के लॉकर में अपनी गृहस्थी है, घर रहता है तो घर में तो चार लोग ही है। एक गुरु कह रहे थे कि आप जब घर में रहते तो आपके तो चार लोगों को संभालना है, हमारे तो 400 की गृहस्थी है, 400 शिष्य है, फिर 4000 हो जाते हैं, कितनी बड़ी गृहस्थी रहती, गुरु की गृहस्थी कम रहती है क्या, इस संसार में हर किसी की गृहस्थी है ही। तो स्नेह पाश हर जगह, व्यक्ति हर अवस्था में बन सकता है, केवल स्थान छोड़ने से आवश्यक नहीं कि स्थान छोड़ने से पाश कट जाएगा। जो गृहस्थ है, एक तो गृहस्थ एक जीवन भी है, परंतु गृहस्थ एक प्रवृत्ति भी है। गृहस्थ प्रवृत्ति मतलब स्पष्ट रूप से क्या है, वुड लाइक टू लिव इन कंफर्ट जोन। सबसे पहला गृहस्थ प्रवृत्ति मतलब जो कंफर्ट जोन, आराम से जितना जमता उतना ही करेंगे, हम ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, जो कष्ट को स्वीकार करना नहीं चाहता है। तो पहला था कंफर्ट्स, कन्वीनियंसेस, कंसेप्शंस, कंडीशनिंग्स, ये गृहस्थ प्रवृत्ति होती है। एक होता है कंफर्ट मतलब उसका आराम चाहिए, अपना एसी चाहिए, अपना लॉकर चाहिए। तो आप किसी भी अवस्था में, किसी भी आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के भी गृहस्थ प्रवृत्ति निर्माण होती है कि नहीं, होती है। अपनी प्राइवेसी चाहिए प्रभु जी, अपना अलग से अपना हो, फिर हमारा ये टाइम है, मतलब वो सतोगुणी सात्विक जीवन कभी कभी होता है ब्रह्मचर्य, परंतु सात्विक जीवन भी ब्रह्मचर्य बंधन बन जाता है। शुद्ध सत्व मतलब पूर्ण शरणागति, जो कृष्ण के आह्लाद के लिए, वास्तविक गोपियों को क्यों श्रेष्ठ कहा, गोपियों ने संन्यास लिया था क्या, कई वर्णन है गोपियां कुछ सैफ्रॉन वगैरह पहनी थी, परंतु गोपियों को सबसे श्रेष्ठ कहा, चैतन्य महाप्रभु उनकी आराधना कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परम विरक्त चूड़ामणि वे कहते गोपियों की भक्ति श्रेष्ठ है, उद्धव कहते गोपियों की भक्ति श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी कहते गोपियों के चरणों की धूली चाहिए, सब गोपियों के बारे में। और गोपियां कहती है घर गृहस्थी में रहने वाली थी ना, चूल्हा चौका देखने वाली, कुछ कौन व्यासासन पे देखे प्रवचन दिया गोपियों ने कभी, भागवत कथा ललिता सखी के द्वारा, ऐसा कई वर्णन है कि फेसबुक लाइव चल रहा है विशाखा सखी का, कभी किसी कैमरा के सामने नहीं आए, कभी व्यासासन पे नहीं बैठे, कभी वैराग्य जीवन धारण नहीं किया, परंतु क्यों श्रेष्ठ कहा गया। भगवान श्री कृष्ण कहते कि तुम्हारी ऐसी भक्ति है कि मैं ऋणी बन गया हूं, ब्रह्मा का भी अगर मुझे जीवन प्राप्त हो फिर मैं ऋण से मुक्त नहीं हो सकता हूं। क्यों? तो विशेष रूप से कहा जाता है उन्होंने समस्त धर्मों को सर्वधर्मान परित्यज्य, तो वहां पे कहते देह धर्म, लोक धर्म, वेद धर्म, कुल धर्म, ये चार धर्म है ना, और भी कई धर्म, समस्त धर्मों को त्याग दिया। मतलब हालांकि परिवार में थे परंतु निरंतर उनका चित्त मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, जैसे वो गोविंद दामोदर माधव थे उसमें कहते हैं गोपियों की क्या विशेषता थी, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, जिनके चित्त और वृत्ति दोनों, वृत्ति मतलब समस्त क्रिया है, और आंतरिक और बाह्य दोनों ही श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित था। तो वैसा गोपियां जो है आधी रात में भगवान ने बंसी बजाई, तो गोपियों ने कहा कि अभी सोने का टाइम है, बाद में बंसी हो जाना। भगवान की पुकार जब आ जाए उसी क्षण दौड़ पड़े। जिस क्षण कृष्ण की सेवा की अगर अवसर आए तो समस्त प्राधान्यता जीवन की एक और रख दी जाए, उसको कहते गोपी भाव। गोपी भाव मतलब इतना सस्ता थोड़ी कोई भाजीपाला है। गोपी भाव मतलब हम, गोपी भाव मतलब अपने कंफर्ट जोन का त्याग करना, सीधा सीधा कहा जाए। और भगवान के लिए बहुत बड़ा रिस्क था आधी रात को जाना स्त्री के लिए, 5000 साल आजकल की नहीं, आजकल की स्त्रियां अगर घूमती होंगी तो कोई परवाह नहीं, पर तो वैदिक संस्कृति में कोई स्त्री अकेले घर से निकलना यही कठिन, संध्या के बाद निकलना और अधिक कठिन, आधी रात को 12 बजे जा रही है। परंतु सभी प्रकार के धर्म को त्याग किया था गोपियों ने। तो पहला गृहस्थ सूक्ष्म त्याग कह रहा हूं मैं, स्थूल त्याग हो गया घर का त्याग, सूक्ष्म रूप से मतलब कंफर्ट कन्वीनियंसेस, हमको ये सुविधाएं चाहिए प्रभु जी, ये नहीं होगा तो हमसे भक्ति होने वाली नहीं है, भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ले लो आपन कंठी माला। हमको बढ़िया प्रसाद चाहिए, 2 टाइम प्रसाद नहीं मिलेगा, चपाती नहीं है तो फिर 2 टाइम चपाती मिले, तीसरे टाइम हड़ताल हो गई। कंफर्ट्स कन्वीनियंस ये होता है, मतलब तो देह के कुछ हमको सुविधाएं चाहिए, फिर मान हम हमारे मन के अनुकूल होना चाहिए, हमको जैसा अच्छा लगता है वैसा व्यवहार सबका होना चाहिए। अगर नहीं रहा तो फिर हम भी मान लीला कर लेते हैं, मान लेकर बैठ जाते हैं कभी कभी, भक्ति में भी फिर हम ऐसा अभिमान लेकर बैठते हैं। तो स्थूल में एक तो शरीर का होता है, मन का होता है, और इससे सूक्ष्म फिर होता है अहंकार का। हम अपनी कुछ धारणाओं को लेकर, जिसको कहते कंसेप्शंस, कंफर्ट्स कन्वीनियंस कंसेप्शंस, कंसेप्शन मतलब क्या है, पूर्व धारणाएं, और पूर्व धारणाओं के कारण हम किसी को पूर्णतः शरणागत होना नहीं चाहते। हम जब कहते हैं नम्रता की, मैं शायद पिछले रविवार को इसको कहा था, नम्रता की परिभाषा क्या है, किसको कहते हैं नम्रता, आप कहते हैं नम्र होना चाहिए, दैन्य भाव, तो नम्र का एक अर्थ होता है हाथ जोड़ लो ऐसा, नम्रता का दूसरा अर्थ है कि थोड़ा सिर भी नीचे झुका दिया 90 एंगल में, तीसरा नम्रता का लक्षण होता है आप दंडवत प्रणाम भी कर लेंगे। नम्रता इसको नहीं कहा गया है, रियल ह्यूमिलिटी इसको कहते हैं कि आप अपने पूरा स्वतंत्रता को किसी व्यक्ति के हाथ में जब सौंप देते हैं, मार भी राख भी जो इच्छा तोहार नित्य दास प्रति तुहार, इतनी तैयारी हो जो साधु गुरु के हाथों में हम अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हो, इसको कहते हैं अहंकार का त्याग। ये नहीं होने वाला, बाकी सब होगा दंडवत मार लेंगे, परंतु करेंगे हम अपने हिसाब से, उतनी शरणागति नहीं जमेंगे हमसे कि मैं अपनी स्वतंत्रता को सौंप दूं किसी के हाथ में, उसको कहते समर्पण। तो ये त्याग जो यहाँ पे सन्यास के विषय में गृह त्याग का वर्णन आ रहा था, तो मैं कई विचार मेरे साथ मेरे मन में एक साथ आ रहे थे, मैं बहुत कुछ बोलना था, कुछ कुछ बोला कुछ कुछ नहीं बोला। तो क्या था, कहाँ गया कंफर्ट, और क्या था, कहते लिखा था कहाँ से लेगा, ठीक है। और चौथा क्या था, कंडीशनिंग्स, तो कंडीशनिंग मतलब हम कंडीशन्ड हो जाते हैं ना, एयर कंडीशन होता है वातानुकूलित, तो ऐसे हम भी कुछ कंडीशन रहते हैं कुछ अपने स्वभाव के अनुसार, जैसा अपना स्वभाव वैसे हम करेंगे। परंतु किसी का स्वभाव होता है कि वो प्रचार करना चाहता है, परंतु यदि गुरु साधु का आदेश हो तो वो अपने स्वभाव के विपरीत क्रिया करने के लिए भी तैयार हो जाए, स्वभाव नहीं है वैसा, परंतु हाँ साधु गुरु की प्रसन्नता है तो वह भी करने को जो तैयार हो, तो इसको कहते हैं। तो वास्तव कि देह धर्म कुल धर्म लोक धर्म वेद धर्म और अंततः अहम धर्म जो होता है, ये हमारा अहंकार, ये शरणागत होने नहीं देता किसी के। हम प्रवचन सुन लेंगे परंतु खुद होकर हम जाने को तैयार नहीं कभी किसी वैष्णव साधु, जिस तरह से आप भागवत में देखते श्रोता की योग्यता क्या है, अब शौनक ऋषि आप देखेंगे इतने बड़े विद्वान है, सुध गोस्वामी जूनियर डिवोटी है, शौनक आदि 88,000 ऋषि सब सीनियर डिवोटी थे, नारद मुनि व्यासदेव सीनियर थे, सुखदेव गोस्वामी एक तरह से जूनियर थे, परंतु जूनियर ऊपर बैठा है, सब सीनियर नीचे बैठे हैं और शौनक कह रहे कि वयम तुन वित्रुप्याम उत्तम श्लोक विक्रम या शुणताम रसज्ञानाम साधु साधु पते, हमारी संतुष्टि ने आप बताइए, हमको कुछ बताइए, कुछ कहिए। वास्तविक हमको जरूरत है साधु संगति की, साधु को हमारी जरूरत नहीं पड़ी है। एक बार एक भक्त कह दिए, वास्तविक मैंने गुरु के ऊपर उपकार किया है दीक्षा लेकर। मैं सर पकड़ के बैठ गया था जब उसने ये कहा कि वास्तविक ये गुरु महाराज जो है, इनसे अगर मैं दीक्षा नहीं लेता तो इनके शिष्य की महिमा कैसे बढ़ती। वो शिष्य नहीं रहे क्योंकि उन्होंने वो लक्षण दिख ही गए थे उनके, वो जिस तरह की भाषाएं बोलते थे, फिर वो शिष्य नहीं रहे, मैं नाम नहीं को, परंतु इतना अभिमान आ गया वो कहे कि गुरु श्रेष्ठ क्या कि मैंने दीक्षा ली उससे, इस तरह। तो मतलब हमको साधु संगति में आते कभी लगता कि उनकी जरूरत है तो वो सेवा देंगे हमको, हम खुद क्यों आ जाए, उनको मार्गदर्शन देना है ना वो करेंगे। जो काउंसलिंग सेमिनार में हम सुन रहे थे, उसमें कहते हैं वास्तविक काउंसलिंग ये हमारी अपनी आवश्यकता है, आध्यात्मिक मार्गदर्शन हमारी आवश्यकता, हमें जाना पड़ेगा साधु के चरण में, आप कृपया हमें बताइए। यहाँ पे आप देखेंगे भागवत में, चाहे वो विदुर हो, चाहे शौनक आदि ऋषि हो, चाहे परीक्षित हो, जो बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे, अरे इन वैष्णव की तो कल्पना नहीं कर सकते इनकी भक्ति कितनी महान होंगी, परंतु दैन्यता जब उन्होंने प्रकट की, हाथ जोड़कर इस तरह कहते हैं, हनुमान जी जो बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा गया, और हनुमान जी जब यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र कृतमस्तकांजलि कहा गया, जहां पर राम जी का कथा होती है हाथ जोड़कर सिर नीचे झुकाकर आंखों में आंसू भर के वो बैठते हैं। तो गृह त्याग मतलब केवल एक बाहरी त्याग तो आवश्यक ही है, परंतु वास्तविक त्याग ये सूक्ष्म है कि हम अहंकार का त्याग करते हैं क्या, जितना कुछ मेरे समर्पण में बीच बीच में आ रहा है, राधा कृष्ण की जो अनन्य निष्ठा है, अनन्य जो भक्ति करनी है, उसके बीच में जो जो आ रहा है वो त्यागने के लिए हम तैयार हो तो उसको वे पूर्ण त्याग, तब यहां संपूर्ण होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, खत्म ही नहीं होने वाला और बहुत कुछ है। किसी को टीका टिप्पणी, पता नहीं मैं एकदम एग्जैक्ट क्रम में नहीं कह रहा था। क्या निकल एकादशी चैतन चैतन कर सकते हैं, सब कुछ बहुत कुछ है इसमें, तो तुलसीदास के शब्द हैं, धीरे धीरे।